अध्याय का 64 श्लोक तक हम पहले चर्चा किया था, तो अब 65 और 66 श्लोक को चर्चा करेंगे। अच्छा, भगवान 64 श्लोक में कह रहे हैं, सर्वगुह तमंग भूय श्रीनु में परमंग वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्थात ततो वक्ष्यामि ते हितम्, अर्जुन मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे हित के लिए, कल्याण के लिए मैं तुमको बताऊंगा। तो बताने का कारण क्या है? इष्टोषि मे दृढ़ इति, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे हो। दृढ़म इति इष्टोषि मे, बहुत बहुत प्यारे। भगवान किस क्या बताएंगे आप अर्जुन को? सर्वगुह तमंग, जो ज्ञान सबसे गोपनीय है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। इष्टोषि मे दृढ़म, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे हो, प्यारे मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्यतम ज्ञान है, सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। तो कौन सी सर्वगुह्यतम? व्हाट इज द मोस्ट सीक्रेट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल नॉलेज, दैट कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग इन द वर्स, नेक्स्ट वर्स, वर्स 65 ऑफ द 18th चैप्टर। एंड व्हाट इज दैट? मन मना भव मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्तं ते प्रति जाने प्रियोसि। तुम सबको सुना दो, खड़ा होकर सुनो।
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रति जाने प्रियोसि।
वेरी गुड, थैंक यू। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। मन मना भवो, मन के द्वारा मेरे चिंतन करो, मेरा चिंतन करो। मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मत जाजी और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। प्रति जाने प्रियोसि मे, क्योंकि अर्जुन भगवान के बहुत प्यारे हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को इस ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं के चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वो अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 2400 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वो निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहाँ वो साक्षात कृष्ण के सान्निध्य में रहेगा। ये गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वो कृष्ण के प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वो कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से बंसी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सावले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य शास्त्र में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्तों को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन को समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की ये एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वो कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। तो मन मना भवम, मन का कार्य क्या है? मन हर समय क्या करता है? चिंतन करता है। मन सदैव चिंतन करता है। मन का कार्य है चिंतन। जब तक मन सक्रिय रहता है मन में चिंतन होता है। तो ये चिंतन जो मन का जो कार्य है कैसी होना चाहिए? मन का कार्य चिंतन किस विषय में करना चाहिए? अगर हम भौतिक विषय में चिंतन करेंगे तो भौतिक जगत का बंधन अधिक से अधिक दृढ़ बन जाएगा। जितने ही हम भौतिक विषय में चिंतन करेंगे हम भौतिक जगत में फंस जाएंगे, बद्ध हो जाएंगे। परंतु हम अगर कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं तो उसके कारण हम भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि भौतिक बंधन का कारण है कृष्ण विस्मृति, या श्री कृष्ण को हम भूल गए हैं, इसलिए हम भौतिक जगत में बद्ध हो गए, भौतिक जगत का बंधन में फंस गए। तो भौतिक जगत का बंधन के कारण हमें क्या मिल रहा है? हम जो चाहता है, हम क्या चाहते हैं? सब हमारा चाहना क्या है? हमारा चाहना है आनंद। बल्कि भौतिक जगत में क्या मिल रहा है? हम सुख के प्रयासी हैं, बल्कि भौतिक जगत में हमें दुख मिल रहा है, क्योंकि भौतिक जगत का स्थिति ही ऐसी है। त्रिताप दुख है, तीन प्रकार के कठिनाई, तीन प्रकार का दुख, तीन प्रकार का कष्ट आध्यात्मिक मतलब शरीर और मन से जो क्लेश होता है, आध्यात्मिक क्लेश, आधि भौतिक दूसरों के कारण जो कष्ट हो रहा है, दूसरों ने जो हमें कष्ट दे रहे हैं वो है आधि भौतिक, और आधि दैविक प्राकृतिक विपर्यय के कारण जो क्लेश हमें मिल रहा है वो है आधि दैविक। तो ये तीन प्रकार के क्लेश के अधीन हर जीव है। तो अगर हम इस भौतिक इस कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें इसका कारण समझना होगा। इसके कारण क्या है? कृष्ण वैमुख, भगवान को हम अस्वीकार किया है, भगवान को हम त्याग दिए हैं, इसलिए हमें ये कष्ट मिल रहा है। भगवान को त्यागने के कारण हमें कष्ट मिल रहा है। अगर हम ये कष्ट इस कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें क्या करना होगा? भगवान को याद करना। भगवान को भूल जाने के कारण हमें कष्ट मिल रहा है। भगवान को हम अगर याद करेंगे तो क्या होगा? उस कष्ट का निवृत्ति। तो याद का जो प्रक्रिया है वो है मन के द्वारा भगवान को चिंता, मन मना। कभी कभी लोग पूछते हैं आप क्यों सारे समय ये हरे कृष्ण जप रहे हैं? जपने का कारण भगवान को याद कर। हम जब भगवान को नाम लेते हैं तो भगवान को स्मरण में आता है, भगवान को याद आता है। तैसे अभ्यास करते करते हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ लेते हैं। तो ये संपर्क जोड़ने से ही हमारा जीवन का सफलता प्राप्ति होता है, सिद्धि। सिद्धि का मतलब सफलता। सफलता का मतलब है हम जो हैं वो बनना। असल में हम शरीर हैं या आत्मा है? बल्कि अब हम क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हमारा परिचय कैसे है? तो ये क्या हमारा स्वरूप है? शरीर क्या है? शरीर क्या हमारा स्वरूप है? अर्थात हम हमारे स्वरूप खो बैठे हैं। तो हमारा स्वरूप में अगर हम पुनः स्थित होना चाहते हैं, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। शाश्वत मतलब नित्य, जो नित्य स्थिति हमारा जो है उसको प्राप्ति। उसको प्राप्ति कैसे हो सकता है? भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से। कोई सोच सकता है मेरा जीवन में तो कठिनाई नहीं है, मैं तो मजे में हूं। तब हम उनको बताएं बोलेंगे ठीक है, जब कठिनाई आएगा तब भगवान को याद करना, कभी ना कभी कठिनाई आएगी। हो सकता है कि अब नहीं है बल्कि जब आएगा, कम से कम तब तो याद करो भगवान और करके देखो क्या होता है। भगवान को याद करने से, भगवान को शरण लेने से क्या होता है? जो लेता है उसको पता चलता है। क्या होता है भगवान को शरण लेने से? भगवान को शरण लेने का स्वाभाविक फल क्या है? स्वाभाविक फल है हमारी कठिनाई से मुक्ति। जिंदगी में कितने सारे उलझन आता है, जब हमको वो उलझन को संभालना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी उसको हम संभाल सकते हैं, बल्कि कभी ऐसी उलझन आता है कि उसको हम ऐसी समस्याएं आती हैं कि हम उसको संभाल नहीं पाते। जब हम ऐसे अपने को हम अपने को इतना ही अक्षम असमर्थ समझते हैं, तब क्या करना चाहिए? और किसी को शरण लेना जो हमें उद्धार कर सकते हैं, ऐसा होता है ना? जब कभी रुपए का समस्या आ जाए, हमारे पास रुपए नहीं है, तो हम क्या करते हैं? दोस्तों के पास जाते हैं, जाके बोलते हैं भाई थोड़ा हेल्प कर दो। वैसे ही दोस्त या रिलेटिव्स हमें मदद देते हैं। तो ऐसे जब हम उलझन में पड़ते हैं, जब हम कठिनाई को सम्मुखीन होते हैं, तो हम और किसी को सहारा लेते हैं। अगर ऐसे कोई व्यक्ति है जो सब स्थिति में हमें उद्धार कर सकते हैं, अगर मेरा कोई समस्या है कुछ कोई हजारों रुपए का, अगर हमारा दोस्त लाखपति है तो उसके पास जाके बोल सकते कुछ कोई 5-7 हजार रुपए दे दे, लोन दे दे। जब लाखों रुपए का समस्या होता है, अगर दोस्त है जो करोड़पति है उसके पास जाके बोल सकता है। अगर करोड़ों रुपए का समस्या हुआ है तो अरबपति जो दोस्त है उसके पास आप जा सकते हैं। अगर अरब रुपए का समस्या हो गया है और किसी को पास वो समस्या का समाधान का संभावना नहीं होता, तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। बल्कि हमारे एक दोस्त ऐसे हैं जो सारे संसार के मालिक हैं। अगर समस्या आया, अगर हम उनके पास गया, तो वो हमें कभी ना देखेंगे। वो बोलेंगे क्या असुविधा क्या हुआ है, हम अगर बताएंगे देखो ये असुविधा हो गया। तो अगर सही दोस्त है, अंग्रेजी में एक कहावत है, A friend indeed is a friend indeed. तो रियल असुविधा में जो हमें संभालते हैं वही हमारे परम मित्र हैं। तो हर जीव का परम मित्र कौन है? परमेश्वर भगवान। तो इसलिए भगवान को शरण लेना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि पहले पहले शुरू शुरू में विश्वास नहीं हो सकता है कि भगवान है, अगर है वो सुनेंगे क्या, और सुनेंगे भी तो वो सप्लाई करेंगे क्या, ऐसे मनोभाव हो सकता है, मन में शक हो सकता है। बल्कि जब देखते हैं अरे वो तो समस्या का समाधान हो गया, भगवान के पास पूछा, भगवान के पास अपना ये पेश किया कठिनाई का स्थिति, और उसका समाधान हो गया, देखो भगवान संभाल दिया, तो ऐसे हमें विश्वास भगवान के प्रति बढ़ता जाता है। ऐसी उपलब्धि किसको हुआ है? कौन अनुभव किया कि भगवान के पास जाने से भगवान हमें हमारा समस्या का समाधान किए? वेरी गुड, सबको ही हुआ है। ऑल ऑफ यू आर वेरी एडवांस्ड डिवोटीज। तो इसके पश्चात भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ गया और मन में कोई शक है? वेरी गुड। तो मन मना भवो, तब हम उसके पश्चात ऐसे भगवान को भक्त बनते हैं, मद भक्तो। और जब भगवान को भक्त बनते हैं तो क्या करते हैं, भगवान के सामने अपने आप को समर्पण कर देते हैं। मांग नमस्कुरु, नमस्कार करने का मतलब क्या है? नमस्कार प्रणति, प्रणति प्रकृष्ट रूपेण नति, नति का मतलब है सर झुकाना। और प्रकृष्ट रूपेण का मतलब है बहुत अच्छा तरह, बहुत सुंदर भाव से, बहुत सुंदर भाव से जब हम भगवान के पास अपने आप को समर्पण करते हैं उसके प्रणति या प्रणाम कहा जाता है। मज्जाजी मेरा पूजन करो, मेरा मुझे नमस्कार, भक्त ये करते हैं। तो भगवान का प्रतिश्रुति क्या है, जब हम ऐसे भगवान के पास जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, भगवान प्रतिश्रुति दे रहा है सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्व प्रकार जो कर्तव्य बोध है उसको त्याग कर मेरे शरण, क्योंकि भगवान को शरण लेना ही धर्म है। धर्म का मतलब है भगवान के पास अपने आप को समर्पण। तो जब भगवान के पास समर्पण होता है तो वही सही धर्म का अनुष्ठान। ऐसा कोई धर्म है जिस धर्म में भगवान को स्वीकार नहीं करता है? दुनिया में ऐसा कोई धर्म है नहीं। और हर धर्म में क्या हो रहा है, भगवान के बारे में उपदेश और भगवान के परिचय प्रदान किया गया है और भगवान के पास समर्पण करने का निर्देश दिया गया है। तो इसलिए धर्म का मतलब होता है भगवान के पास अपने आप को समर्पण। तो ये समर्पण जो होता है तभी सही धर्म का अनुशीलन होता है। भगवान के पास भगवान को शरण लिए बिना, भगवान के पास अपने आप को समर्पण किए बिना जो धर्म है वो धर्म नहीं। तो इसलिए बोला कि अगर ये कोई धर्म है जिसमें भगवान के पास समर्पण नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, भगवान को जानकर भगवान के पास समर्पण करना चाहिए। तब भगवान क्या करते हैं, प्रतिश्रुति क्या दे रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको तुम्हारे सारे पापों से मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मुक्त कर दूंगा। पाप के कारण कठिनाई मिल रहा है, पाप के कारण ही कष्ट, जो कष्ट हमें मिल रहा है उसका कारण है पाप। अगर पाप मुक्ति हो जाएगा पाप से तो कठिनाई रहेगा, हम कठिनाई चाहते हैं, हाँ कठिनाई चाहते कोई, तो भगवान के पास समर्पण होने से पाप का मुक्ति हो जाएगा, मतलब कोई और कठिनाई नहीं रहेगा, कष्ट नहीं रहेगा। तो देखो कष्ट से मुक्ति प्राप्ति के कितने सरल उपाय हैं, केवल भगवान के पास अपने आप को समर्पण करो। सर्वधर्मान् परित्यज्य, भगवान स्वयं कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरे शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये है भगवान का अंतिम उपदेश। समझ गए हो भगवान का अंतिम उपदेश, सब पालन करोगे इस निर्देश के अनुसार, बहुत अच्छा। कौन ये निर्देश को, हर निर्देश को ग्रहण कर चुके, हाथ उठा। इस निर्देश को अनुसरण करने से कोई फायदा हुआ है या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ है? वेरी गुड, फायदा हुआ। तो क्या करना चाहिए? आप भगवान का शरण में ही रहो, भगवान के शरण में रहकर जिंदगी सफल करो। थैंक यू वेरी मच। आज निताय चंद्र प्रभु का जन्मदिन है, सो वी गॉट अ केक। अच्छा, कल मैं